प्रातस्मरणीय परम भागवतीय पुण्य श्लोक परमात्मनीय श्रद्धेय श्री स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज स्वामी अखंडानंद जी महाराज यति कुल शिरोमणि श्री स्वामी विद्यानंद जी महाराज सभी संतों को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। मानव मात्र पूर्व का हो या पश्चिम का हो, मानव ने हमेशा सुख और आनंद की ही आकांक्षा की है। दुर्भाग्य है कि वह सुख उनको देख रहा है कि जो कि दुख के द्वार हैं। गीता ने कहा यही संस्पर्श जहा भोगा दुख यो न ये बते आद्यंतवंत कौंतेय न तेषु रमते बुधः। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांच तन्मात्रा हैं जिनके द्वारा इंद्रियां उपभोग करती हैं, और ये भोग और उपभोग के द्वारा ही इंद्रियां हमारे दुख के कारण बनती हैं। एक सन्यासिनी माता जी हरिद्वार में बहुत वर्ष पूर्व रहती थी, बड़े विद्वान थी। उन्होंने कहा स्वामी जी हमारी एक शिष्या है, उनको कोई तकलीफ है, बीएचईएल के हॉस्पिटल में थोड़ा उनकी जांच करा दे। पुराने दिनों में हरिद्वार में रामकृष्ण आश्रम, रामकृष्ण मिशन और बीएचईएल के अतिरिक्त और कहीं विशेष सेवाएं तबीबी रूप से उपलब्ध नहीं थी। इस सन्यासिनी को क्या है, पाइल्स हो गए है। पाइल्स होने की दो वजह होती है, एक तो अधिक मिर्ची खाए, दूसरा तो अधिक कब्ज रहे। यह सन्यासिनी है वो मिर्ची प्रिय थी, मिर्ची प्रियानंद कह सकते हो, कच्ची मिर्ची खाना पसंद करेगी। मिर्ची को कच्चा काटती थी लंबा लंबा, और जैसे कि लोग कच्ची मूली गाजर खाते हैं ऐसे प्रातः दोपहर शाम रात 500-700 ग्राम आधा किलो तक ज्यादा कुछ मिर्ची खाना उनके आनंद का विषय था। अब ये कष्ट होने की वजह क्या हुई, एक महात्मा जी ने अखबार में पढ़ा स्वामी अध्यात्मानंद जी के द्वारा किसी हॉस्पिटल का उद्घाटन भरूच में हो रहा है। वो उद्घाटन के समय उपस्थित हुए, हमें प्रसन्नता हुई, हमारे ऋषिकेश के संत थे वहां। डॉक्टर ने बड़े प्रेम से सबके लिए पिस्ता के आइसक्रीम का बंदोबस्त किया था, वो 120 रुपए का एक कप। हमने कहा हम तो मीठा खाएंगे नहीं, ठंडा तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, हमारी गतिविधि के विरुद्ध की बात है। महाराज जी एक चम्मच तो लीजिए। मैंने कहा महात्मा जी को दीजिए। डॉक्टर साहब राजेंद्र सेठ हैं, उनके तीन भाई, माता पिता सभी लोग डॉक्टर, उनकी पत्नियां भी डॉक्टर, उन्होंने अपना पारिवारिक बड़ा हॉस्पिटल खोला था। महात्मा जी ने डॉक्टर के द्वारा प्रदत्त दो आइसक्रीम तो खाई, हमारी भी खा ली। बताया नहीं कि उनका फास्टिंग शुगर 450 रहता है, तीन आइसक्रीम खाने के बाद में वो कोमा में चले गए, शुगर 650 हो गई, ब्लड डिसेंट्री हो गया। 7 दिन के बाद में जब सूद आई तो हमने कहा महात्मा जी क्या हुआ, बोले ऐसे तो होता रहता है, तो शरीर का धर्म शरीर करे, हमारा धर्म हम करें। ये क्यों ऐसा है, बोले महाराज जी छोटेपन में ही जब हमने संन्यास ले लिया था तो हर आश्रम में रहकर के व्यवस्था शक्ति तो थी, कोठारी ही बनते थे, सब लोग अड़दिया लाडू हैं, कोई हफ्ते में एक बार दो बार भंडारा हुआ तो खा लेते थे। मैं तो पूरा डब्बा भर के अपने पलंग के नीचे रखता हूं, 2 TDS, 2 लड्डू 3 times a day, सुबह 2, दोपहर को 2, शाम को 2। तो ये जो जिह्वा है जो आनंद प्रदान करती है वही तो दुख प्रदान करती है। फिर मिर्ची खाओ कि लड्डू खाओ, यही संस्पर्श जाहा भोगा। बूढ़े लोगों को पीठ में खुजली आती है, आजकल खुजली करने के लिए एक प्लास्टिक का डंडा हो गया है हुक वाला, जिससे किया जा सकता है। नहीं तो पहले लोग अपनी पीठ को दीवार में रगड़ते थे, कब तक रगड़ते थे, जब तक जलन नहीं आ जाती है तब तक। इंद्रियों के तमाम सुख है जलन देने वाले ही है, इंद्रियों के कभी सुख नहीं दिया है, अधिक नहीं देखने का देखना, नहीं खाने का खाना, नहीं बोलने का बोलना, नहीं सुनने का सुनना, नहीं जाने का जाना। इंद्रियां ही दुख के कारण, इंद्रियां ही दुख के द्वार हैं। पूज्य ब्रह्मलीन श्री डोगरे महाराज जी कहते थे आंख तो पाप का द्वार है, आंख से देखा नहीं कि वहीं से हमारी त्रुटियां उत्पन्न होती है। कृष्ण कहते हैं इन तमाम द्वारों पर संयम का एक डंडा लगा। हमने भागवत कथा कितनी बार सुनी होगी, हमें क्या ये पता नहीं कि कृष्ण भगवान वैकुंठ के द्वार पर, भगवान नारायण के द्वार पर जय विजय ने भी संयम छोड़ा था। उन संयम के त्याग के कारण ही उनको राक्षस योनि में आना पड़ा। वैकुंठ के द्वार पर रहने वाले जय विजय भी यदि वस्तुतः परमात्मा के पार्षद, उनके स्वरूप है, सामीप्य सारुज्य सानिध्य सारूप्य ऐसे होने वाले पर भी अगर वो भी संयम छोड़ दे तो उनको भी ये राक्षस योनि में जाना पड़ेगा। तो हमें अपने जीवन के बारे में कभी विचार नहीं, कभी टटोला नहीं हमने। हम जो विचार करते हैं उनके भाव की दहली नहीं होती है, वो विचार उद्दंड होते हैं, न विवेक है न धैर्य है। इसलिए परमात्मा हमें सावधान करते हैं, सर्वद्वाराणी संयम, तमाम द्वारों पर संयम करो। कुर्मोंगानी व सर्वसह, जैसे कि शिव जी के मंदिर में कछुआ रहता है, वो अपने अंगों को संकोच कर लेता है। ये नहीं कि अंग का उपयोग करता, अवश्य उपयोग करता है। 1000 रुपए के नोट के आप एक एक करा लें तो एक 1000 अभ्यागतों को एक एक रुपया बांटा जा सकता है। उससे खिचड़ी बना ले तो हमारे उड़ीसा में तो आजकल भी 7 रुपया 8 रुपया में एक इंसान का पेट भर जाता है। दाल चावल सब्जी सब मिला करके खिला दे, आप कितने लोगों की तृप्ति कर सकते हैं। किंतु वही 1000 रुपया है उसको आप जुए में लगाएं, शराब पी ले। सुना कि परसों रात अहमदाबाद में जब भारत की जीत हुई तो 1 करोड़ रुपए के फटाके फोड़ दिए गए। ये धुआं तो किया है 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ रुपए की आइसक्रीम खा ली गई। वो खाना तो बुरा नहीं था, किंतु फटाके 1 करोड़ का फोड़ना, ये क्या है, ये वजह क्यों होती है इसे? क्योंकि हम अपनी गतिविधि में विचार की धाराओं में बह जाते हैं, जहां के विचार में स्थिरता और धैर्यता नहीं होती है। कृष्ण कहते हैं कि मन को हृदय में लगाओ, मन हृदय निरुद्य च, स्थापित करो। ये स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है। साधारण दूध में से दही बनाने के लिए भी दूध में जामन डाल करके दूध को एक स्थान पर स्थिर रखना पड़ता है। ये बहुत आवश्यक बात है। बोलिए, एक स्थान पर स्थिर। हमारे जीवन स्थिर नहीं है, चंचल है, यहां गया वहां गया। परसों कोई सुबह मिलने के लिए आया, बोला स्वामी जी अब तो धंधे से मैं निवृत्त हो गया हूं, मेरे बच्चे देखते हैं। फिर आप क्या करते हो? अभी 4 धाम की यात्रा करके आ गए। अच्छी बात है। अब क्या कर रहे हो? अब हमने तिरुपति जा रहे हैं। ठीक बात है। अब कहां कर रहे हो? अब द्वारका जी जा रहे हैं। ठीक है। अब क्या कर रहे हो? अब अगले बार अंबा जी जाएंगे। नथिंग रॉन्ग। कब तक जाते रहोगे? गुजराती में कहते हैं ये तो उमराना देव छोड़ीने डुंगराना देव पूजवा जाए। आपके घर के आंगन में जहां खड़े हो वही परमात्मा है। इसका अर्थ यह नहीं कि तीर्थ यात्रा ना करो, करना ही चाहिए। किंतु तीर्थ यात्रा जो करते हो उसमें हरि भजन होता है क्या? पूछो। वो पिकनिक होती है, वो पिकनिक होती है। वहां पर एक विनोद होता है, आनंद होता है, और अध्यात्म को छोड़ के अनाध्यात्म ही होता है। 40 बहनें मिलकर जाएंगी, सबके बीच में प्रेम था, किंतु मन मुटाव भी हो जाएगा, उसने मेरे को ऐसे किया था। 140 लोग मिलकर के कैलाश की यात्रा में गए, वापस आए तो एक दूसरे का चेहरा पर देखना पसंद नहीं करते। क्यों? तेरी वजह से मेरे को इतनी वहां पर कष्ट हुई। तो हमें कहते हैं कि मन को हृदय में स्थिर करो, और स्थिर रखना बहुत आवश्यक है। स्थिरम सुखम आसनम, महर्षि पतंजलि ने भी कहा है। हम अपने आप को स्थिर करें, किंतु स्थिर कैसे होगा? पुनः पुनः मन को हृदय में लगाए। आत्मसंस्तम मन कृत्वा न किंचित अपि चिन्तयेत्। मन को आत्मा में स्थिर करना है। जब आत्मा में स्थिर रहेगा मन, फिर वो चंचल नहीं होगा, फिर वो निर्विचार होगा, फिर वासना क्षय हो जाएगी। मृत्यु के समय में देह का तो मृत्यु हो जाता है, किंतु ये खड़ी हुई वासनाएं, हमारी इच्छाएं, तृष्णाएं, हमारे हवस दुर्भाग्य से हमें नया जन्म लेने के लिए बाध्य करती हैं। क्या कहते हैं कृष्ण? कहते हैं कि उसको अभ्यास तो करना पड़ेगा, बिना अभ्यास के संभव नहीं है। क्या अभ्यास है? तो मूर्धिम आधाय, मूर्धनी वो कहते हैं मस्तक को, आधाय स्थापन करके,
युग धारणा में आस्थित स्थित किया हुआ। सर्व द्वाराणि संयम्य मनः हृदि निरुद्ध्य च आत्मनः प्राणं मूर्ध्नि आधाय योग धारणाम आस्थितः इति। द्वाराणि द्वारों को संयम्य रोक करके हृदि हृदेश में निरुद्ध निरोध करके स्थिर करके स्थापित करके, ये व्यासपीठ है। हमारे यहां हमने एक कथावाचक को कहा कि आप पधारिए ऋषिकेश में, और अकाल में ही बारिश हो गई। आर्य समाज के एक महात्मा होते थे स्वामी आनंद, उन्होंने कहा कि पहाड़ की मौसम, पका हुआ अनाज और जिंदा इंसान, इन तीन का भरोसा नहीं करना, कभी अपने रूप रंग और स्वाद बदली कर ले। जिस इंसान पर आप भरोसा करते हो वही इंसान आपको मार भी सकता है, बेअंत सिंह इत्यादि बताए हमको। पका हुआ अनाज, सवेरे आपने खीर बना के रखी है, बहुत बढ़िया, शाम को 20 लोगों को बुलाया है, बादाम भी डाले, बासमती चावल है, केसर है, बड़े प्यार से बनाइए, 2 घंटे लगाए, फ्रिज में रख दिए और आप काम पर चली गई। आप डॉक्टर है, आपके पति आईएएस अधिकारी है, दोनों के दोनों चले गए। शाम को 8 बजे लोगों को बुलाया है, 6 बजे आप आई, देखा सब तो ठीक ठाक है, किंतु आपके जो बड़े प्रिय ऐसे कोई हो को वो देख, मैंने आज 2 घंटा लगाई, देख ले खीर कैसी है, बड़े दीदी थोड़ा सूंघो तो कैसी बात है, क्यों सुबह 8 बजे काम पर चली गई थी, शाम 5 बजे आई, उनको पता नहीं था सवेरे 9 बजे बिजली चली गई थी, 4 बजे तक बिजली ही नहीं थे, फ्रिज बंद हो गया था, वो खीर कड़वी हो गई है, हमें क्या पता है, सवेरे की दाल सांझे उतरी जाए वो स्वाद नहीं रहेगा। वो अमेरिकन लोगों को मुबारक है कि एक दिन खाना बना ले तो 20 दिन तक वही रख के खा सकते हैं। एक दिन नवरात्रि के अगले दिन अमावस्या की रात में हम विनीपेग पहुंचे, पहुंचना तो सुबह 10 बजे था, बादल मौसम ठीक नहीं था, हवाई जहाज घूम घाम के वापस आ गया। जब पहुंचे वहां पर तो रात 11 बजे थे, घर पहुंचते पहुंचते 12:30 बज गए। वो चंद्रकला हमारे दोस्त की पत्नी है, बड़े प्यार से उन्होंने कहा स्वामी जी भोजन तो करेंगे ना, मैंने कहा नहीं अभी तो अमावस्या की महादिशा हो गई, अब नहीं कर सकते हैं, अब नवरात्रि है, अब विजयादशमी के दिन भोजन करके प्रस्थान करेंगे। ठीक है स्वामी जी, जानती है हमारा स्वभाव, सूर्य है हमको लेने आए थे सुरेंद्र, और 9 दिन तक हमको क्या खाना है, इन्हें भोजन तो करना नहीं था, किंतु जब एकादशी के दिन भोजन करने बैठे और दशहरा के दिन, हमने कहा चंद्रकला तुम्हारे रसोई बनाने की खटपट तो मैंने सुनी नहीं, इतनी सारी सब्जियां इतने सारे व्यंजन कैसे कब बना लिए, समझ गए अब कहां बनाए, आप आने वाले थे ना उस दिन 350 लोगों को भोजन के लिए बुलाया था, आप तो नहीं आए, सबको तो भोजन देना ही पड़ता है, तो फिर लेफ्ट ओवर जो कहते हैं बचा हुआ सब फेंक करके फ्रिज में रख दिया था। आप लोग भी अपने फ्रिज में 12 महीने का आम रस जमा करके रख देते हो, ये तो उचित है, अनुचित तो नहीं, इससे तो गुजारा हो जाएगा, किंतु अपने जीवन में कभी भी हमने 10 दिन के पहले पकाई हुई सब्जियां नहीं खाई थी, किंतु ये उनका ढंग है, हमारी जीवन की वृत्तियां जो है उनको संभालना है हमको, ये बासी चीजों पर मंडराते रहते हैं, बासी पर मन मंडराओ, अपने मन को ताजा रखो, अपने मन को प्रफुल्लित रखो, जो फूल नीचे गिर गया उसको हम परमात्मा को नहीं चढ़ाते हैं, जिस फूल को हमने सूंघ लिया उसको भी चढ़ाने के लिए सोचते हैं, हम शबरी का न्याय करें कि शबरी है उसने फल चखे थे, शबरी ने कभी नहीं फल चखे थे, नहीं, कौन कहता है शबरी ने बेर चखे थे, बेरी की उन झाड़ियों में उंगलियों से तोड़ते हुए बेर में कांटे लगे थे, कांटों से बहता जो रक्त है वही रक्त उन बेर पे लगा था, श्री राम ने जब वो बेर खाए तो शबरी के शरीर के रक्त है उसकी मिठास श्री राम जी को प्राप्त हुई थी, न कि केवल शबरी ने बेर चखे थे, ये कभी की कल्पना भी हो तब भी क्या हुआ, किंतु ये बात जो है विशेष है, अपने जीवन को संभालना है, और कैसे संभालना है कि हमारी चेतना है उसको मस्तक में स्थापित करें। चेतना मस्तक में स्थापित करने का मतलब क्या होता है, जो हमारा मस्तक है इसके अंदर में सेरिब्रम है सेरिबेलम है, जो स्थिर है, आंखें चंचल है, कान भी चंचल है, जीभ तो है ही है, हमारी तमाम कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय हैं, उनमें तमाम में प्रकृति भी है और विकृति भी है, किंतु मन में नहीं है, मन का भागा दौड़ी आपाधापी केवल बुद्धि तत्व से होती है। मन स्वयं विचारों को संजोता है, छोड़ता है, चित्त ग्रहण कर लेता है, बुद्धि में तर्क होता है, अहंकार में गर्भता होती है, किंतु मन की आपाधापी इधर उधर के लिए भटकना मन का होता है तो इंद्रियों के द्वारा होता है। इसी मन को संजो करके रखना है, इसी मन को संभाल करके रखना है, तो मस्तक में अपने प्राण को धारण करना है। आत्मनः, अपने आप को, अपने प्राण को मस्तक पर प्रकृति के मध्य में करेंगे आरंभ में तो दुख हो जाएगा आपको। आस्थित योग धारणा एक दिन में नहीं होता है। जिसने स्कूल कभी गया ही नहीं वो परीक्षा क्या देगा, नहीं दे सकते। प्रवचन करने वाले हैं वो प्रवचन तो कर सकते हैं, किंतु अपने जीवन में जब प्रैक्टिकल का विषय आता है तो बड़ा दुख हो जाता है। वक्तृत्व करना और आचरण करना दो विविध विषय है। वक्तृत्व कर सकते हैं आप, संगीत का, नृत्य का, गायन का, वादन का, रसोई का, पाचक का, पॉलिटिक्स का, सबका कर सकते हैं, किंतु जिन्होंने आचरण ही नहीं किया है आचरण तो करना पड़ेगा। प्रतिदिन आपको उठ करके बैठ करके ध्यान तो करना ही पड़ेगा, प्राणायाम का अभ्यास करना ही पड़ेगा। जीवन में जब मृत्यु आती है किस किस को कहा कि तुम भजन गाओ, चौपड़ी ना बन तो मन ना आवड़ेगी। किसी ने कहा हमारे यहां कुछ लोग मिलने के लिए आए कि माता जी ये महिला बहुत अच्छा, मैंने कहा गाओ ना, कि मेरे को तो अभी कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मैंने कहा मृत्यु के समय क्या याद आएगा बताओ, सब समय चाहिए स्विच डाउन करने के साथ में। हमारे एक बड़े प्रिय प्रेमी रहे डॉक्टर अक्षय कुमार गुप्ता, सुप्रसिद्ध वह वैज्ञानिक रहे। उन्होंने ईमेल भेज दिया, फोन भी करा दिया, मैं मृत्यु के द्वार पर खड़ा हूं, भरोसा नहीं कि 24 घंटा और जियो। स्वामी जी मैं चाहता हूं कि आप मेरे समक्ष हो जब मेरी मृत्यु हो। सवेरे 3 बजे फोन आया, इत्तेफाक से उन दिनों में सवेरे 5 बजे भी हवाई जहाज अहमदाबाद से दिल्ली आता था। हम दिल्ली से सीधे ही एयरपोर्ट से कार पकड़ करके चंडीगढ़ चले गए। दिन भर उनके साथ में रहे, बहुत बोलना कष्ट था उनको, किंतु फिर भी धीरे धीरे बोल रहे थे। उन्होंने यही कहा, स्वामी जी आपके प्रति श्रद्धा का विषय है, मैं आपसे एक बहुत ही निजी जीवन की बात करके फिर मरना चाहता हूं। को क्या, आप हमारे गुरु हैं, आपके जीवन को, आपके गुरुत्व को कहीं भी शर्मिंदा ना होना पड़े। ऐसा मैंने जीवन में कोई कार्य नहीं किया है, मैंने कोई विचार भी नहीं किया है। मेरी मृत्यु के बाद में मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को कभी भी आंखें नीचे करके नहीं रहना पड़ेगा, मैं ये कन्फेस करना चाहता हूं। व्हाट ए ग्रेट अचीवमेंट ऑफ द लाइफ। मृत्यु के समय में वो सीधा खड़ा होकर के वो व्यक्ति ऐसे कह सकता है कि मैंने अपने जीवन में कोई दुर्विचार तक नहीं किया है। बड़ी बहुत बड़ी बात है। शाम 8:30-9 बजे तक मैंने पूछा, कुछ मन में इच्छा है, कुछ नहीं बोल पाए। 10:30-10 बजे बोलते हैं, स्वामी जी आपके आश्रम में हम गए थे, शिवानंद आश्रम ऋषिकेश में, वहां स्वामी शिवानंद शताब्दी में एक दंपति आए थे गुजरात से, रास बिहारी विभा। इन लोगों ने श्री रामचंद्र कृपालु भजमन गाया था, मेरी वही सुनने की इच्छा है। हमने कहा ठीक है। मैं फोन लगाया राज भाई को, कहा कि मैं कहां बैठा हुआ हूं, चंडीगढ़ में हूं, एक आत्मा है वो महाप्रयाण के दहली पर खड़ी हुई है, कल प्रातःकाल का सूर्य उदय शायद नहीं होगा, उनकी अंतिम इच्छा आपके मुख से यह सुनने की। दिसंबर का महीना था, दिवाली के बाद में 4th-5th दिन होगा। उन्होंने अपने धर्मपत्नी विभा को जगाया और दोनों ने टेलीफोन के सामने ये गाया। मैंने कहा तुम्हें और कुछ है? जी स्वामी जी एक और भी भजन है कि एक पंछी है वो जहाज पर बैठा था शाम के समय में, और वो जहाज है चल पड़ा समुद्र के बीच में आ गया। अब समुद्र के बीच में आने के बाद में वो जो जहाज है वो पंछी ने देखा मैं कहां जाऊं। वो जब समुद्र के बीच में जहाज आया जब सवेरा हुआ, अब पंछी उड़ के जाना चाहता है कहां जाए, दूर भटक कर कहीं पर भी उसको न भूमि दिखी न कोई वृक्ष। फिर पुनः पुनः घूम करके वो जहाज पर आकर के बैठता था, वो पंछी उड़ उड़ जाए। वो महाराज जी वो कुछ भजन है, हमने शेखर सेन से कहा, वो बंबई में थे, फोन किया, स्टूडियो में रहे रात 11:15 बजे। स्वामी जी हमें गान कोड़ी निश्चय कोड़ वो उन्होंने गाया, एक मयूरिका है हमारी अहमदाबाद में, उसको कहा तुम भी कुछ गाओ। और विदा का पद है, भगवान जो है ना उसको शयन का पद है, वैष्णव लोग रात में भगवान के पीछे शयन का पद कहते हैं। तुम गाओ। मैंने कहा अब शांति, और कुछ नहीं समझ, कुछ भी नहीं बोले, चिंता मत करो, अपने आप को अनुभव करो कि आपके गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं। आएंगे तो बड़ी खुशी से अपने दोनों हाथ उठा देना, वो अपने हाथ को ग्रहण करके लेके चले जाएंगे। केवल अपने ही भीतर में रहो, अपने गुरु के चिंतन में नहीं, अपने ईश्वर के चिंतन में नहीं, आत्मा के चिंतन में नहीं, किसी भी चिंतन से परे हो जाओ, कोई चिंतन नहीं। अजो निर्विकल्पो निराकार रूपो, ऐसी अवस्था, चिदानंद रूप शिवोहम, मैं नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध अजर अमर अविनाशी ज्योतिषाम अभी तज्योति, ऐसी स्थिति में कोई विचार नहीं, कोई रिपल्स नहीं, परमात्मा की प्राप्ति की भी इच्छा नहीं, मोक्ष की भी इच्छा नहीं, इच्छा मात्र नहीं, निर्विचार। रात एक बजे के समय में हमने अनुभव किया, अपने हाथ उठा रहे हैं, महाप्रयाण हो गया। ये कैसे हो सकता है? अपने जीवन में एक नियम बना के रखा है, मुझे इतना बजे उठना है, इतना ध्यान करना है, इतना जप करना है, इतना मंत्र लेखन करना है, इतना पाठ करना है, इतना दान करना है, बोलने के लिए ऐसे बोलना है कि नजदीक वाला सुनेगा, तो बहुत धीरे धीरे जोर से क्यों बोलना है, वातावरण है उसमें जो साउंड पोल्यूशन नहीं होना, चिल्ला करके नहीं बोलना। साधना तो करनी पड़ेगी, जागृति की पूर्व साधना करनी पड़ेगी, द टोटल अवेयरनेस ऑफ द अवेयरनेस एंड द टोटल कॉन्सियसनेस कॉन्सियसनेस, प्रतिपल कृष्ण बिना बिजू सर्व काचू, जीवन के हर सांस में अपने आप को आस्थितो योग धारणा, योग धारणा में। तो क्या साधना करें? ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, एक केवल ओम है, प्रवण प्रणव है, यही केवल एक अक्षर है, वही ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म योग कहा तो केवल ओमकार ही है, ओमकार। ये ओम जो है वो बीज का बीज, ज्ञान का ज्ञान, तत्व का तत्व, रहस्य का रहस्य है। श्री कृष्ण परमात्मा स्वयं कहते हैं कि मैं प्रणव हूं, ये प्रणव जो ओमकार है मैं स्वयं हूं। तो कृष्ण की भक्ति करने वालों को ओमकार नहीं करना चाहिए, ये ओमकार तो सन्यासियों की गतिविधि है, ये बात अज्ञान है, मिथ्यात्व है। कृष्ण स्वयं है ओमकार के स्वरूप, शिव स्वयं है ओमकार के स्वरूप, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महादेव है आपके, वही देवी है, वही दुर्गा है, वही काली है। देवी सुक्तम है, ये देवी भागवत में अथर्व हमारा वेद में, वो जो देवी सुक्त है, वो देवी सुक्त में उन्होंने कहा, देवी ने कि काशी तो महादेवी थी, देवताओं ने पूछा कि हे देवी आप कौन हो, उन्होंने कहा जन्म में हूं अजन्म में हूं, नित्य में हूं अनित्य में हूं, जागृत में हूं अजागृत में हूं, दृश्यमान तमाम जो कुछ है वो सब कुछ मैं हूं, वही तो ब्रह्म है, वही तो नित्य है, शुद्ध है, चैतन्य है, मूर्त है, प्रत्यक्ष है, वही तो है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ओम इति ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन, यह प्रयाति त्यजन देहम सह याति परमां गतिम। जो पुरुष ओम ऐसे एक अक्षर ब्रह्म रूप को, अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके स्वरूप मेरा चिंतन करता है, देखिए मेरा चिंतन, शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष है, वह परम गति को प्राप्त होता है। ओम है उसका उच्चारण, यह नहीं तेरा, यह नहीं मेरा, ईश्वर का सब राज। मृत्यु के समय चिंता होती, मेरे पीछे सब कौन संभालेगा, अरे नारायण आप आए आप गए, दुनिया चल रही है मेरे प्यारे, हमारे आने के बले भी सृष्टि थी और उस सृष्टि में सब कुछ अच्छा था, हमारे जीवन में बिना सृष्टि के हमारा उपाय नहीं था। मृत्यु के बाद में चार लोग उठाने वाले चाहिए, 10 मन लकड़ियां भी चाहिए, आग लगाने वाला भी चाहिए, आग हटाने वाला भी चाहिए, वो अस्थि चुनने वाला भी चाहिए, अस्थि बहाने वाला भी चाहिए, पिंडदान करने वाला, तो चाहिए 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 की लिस्ट हमको पहले भी थी, हमारे जन्म के पहले माता पिता भी थे, जिसने प्रसव किया कराया वो दाई डॉक्टर हॉस्पिटल भी थे, वो जो सिजीरियन करने के लिए एक नाइफ लेके आए तो नाइफ कहां से आया, उसके पीछे पूरी इंडस्ट्री लगी हुई है, पूरी एक सृष्टि के साथ में हम जुड़े हुए हैं, उसको हम निषेध नहीं कर सकते, हमारा ऋण है इनके प्रति। तो हम क्या कहते हैं कि भाई इसके मारा पची सूत्र से दे विल बी हैप्पी, बोले जान छूटी। लोग बोलते हैं स्वामी जी और कितना दिन तक जिएंगे, मरते नहीं है। अपने आप को इस दुनियावी चक्र के अंदर में, दुनिया में तो रहना है कि तो दुनिया को अपने भीतर में मत डालो, कुएं में गिरना कूदना नहाना धोना वापस आ जाना, कुएं में कूद करके मरना नहीं है हमको, सृष्टि में रह करके सृष्टि है उनके भीतर संजो मत अपने भीतर में, अपने आप को मुक्त रखो। आनंदोहम आनंदम ब्रह्मानंदम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म एकम एवं अद्वितीयम ब्रह्म, वही तो आप हो, आपके भीतर भी वही कृष्ण विद्यमान है जो सर्वत्र विद्यमान कृष्ण। वही जो राधेजू कहती है मेरे शीश पर जगदीश लिख दो, राधेजू क्या कहती है, मेरे शीश पर जगदीश लिख दो, ओठ पर मुरलीधर लिख दो, हाथ में गिरधर लिख दो, मेरी छाती में कुंज बिहारी लिख दो, मेरे पेट में दामोदर लिख दो। वो अपने रोम रोम में श्याम बांके बिहारी लिख दो, हमारे प्रत्येक सांस सांस के भीतर में तन्मय, उसी के ही चिंतन, कृष्ण स्वरूप परमात्मा स्वरूप राम स्वरूप, वही चिंतन चिदानंद रूप आनंदमय चैतन्यमय ज्ञानमय दिदीप्यमान। वही ये कहा ओम इत्येक अक्षरम ब्रह्म, ये ओम जो है प्रणव है वो कैसे करना है, उनका अभ्यास कीजिए। प्रातःकाल उठने पर हो पांच दस मिनट कीजिए, दोपहर को कीजिए, शाम को कीजिए, रात में भी कीजिए, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। क्या होता है उससे, जब ओंकार करते हो आपका सांस बाहर जाती है, सांस बाहर जाती है पेट अंदर जाता है, जब पेट अंदर जाता है आपका हाँ तो उस समय में क्या होता है कि उड़ान बंद होता है, नाभि नीचे जाती है। प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करना, ओंकार करो तो मलद्वार का भी संकोचन करना, ब्रिंग योर एनस इन एंड अप, हो मलद्वार का संकोचन किए तो उसको मूलबंध कहते हैं, मलद्वार का संकोचन करना वो मूलबंध होता है, और जागृति पूर्वक ओंकार किया तो हमारी नाभि अंदर जाती है, पेट अंदर जाती है, उसको उड़ियान बंध कहते हैं। उड़ियान बंध और मूलबंध जब होते हैं तो अपान वायु ऊपर आकर के स्थिर होता है, नाभि के ऊपर प्राण वायु है, नाभि के नीचे अपान वायु है, कृष्ण कहते हैं प्राण अपान समायुक्त पचामी अन्नम चतुर्विधम, ये चार तरह का भोजन जो है मैं पचाता हूं। चार तरह का भोजन क्या है, जब आप सेब खाते हो तो उसको बाइट करना पड़ता है, बटकू भरू पड़े ऐसा करके सेब को, अमृत को भी ऐसे खाना पड़ता है, सैंडविच खाते हो भी, पिज्जा खाते हो तब भी बाइट करना पड़ता है, वो काट के मुंह से खाना पड़ता है, ये पहला होता है। दूसरा दाल चावल है, उसको तो काटते नहीं, चबाना पड़ता है, पहला तो काटना भी पड़ता है चबाना भी पड़ता है, ये केवल काटना नहीं केवल चबाना पड़ता है, किंतु जो हलवा रहे तो और उपमा रहे तो न काटना भी नहीं है चबाना भी नहीं है हाँ। और उससे भी अधिक जले जाए, पानी रहे, चाय रहे, दूध रहे, नारियल पानी रहे, नींबू पानी रहे, तो उसकी और एक अवस्था। चार तरह के भोजन को कृष्ण कहते हैं मैं आपके भीतर बैठ करके चबाता हूं। अहम वैश्वानर हूत्व आई एम दैट कॉस्मिक एनर्जी, आपके भीतर में वही हूं जठराग्नि, वो चैतन्य हूं, वही ऊर्जा हूं, वही क्षमा हूं, औदार्य हूं, जिसकी शक्ति से स्फूर्ति से ये प्राण और अपान समान होते हैं। नाभि है वो केंद्र है हमारी ऊर्जा का, नाभि थोड़ी दाएं बाएं चली गई तो बोलते धारण हटी गई, बड़ा मुश्किल होता है, नाभि को मध्य में ठीक रखना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि आपको ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, एक केवल ब्रह्म है। व्याहरण, व्याहरण का अर्थ होता है कि उसके अर्थ स्वरूप उच्चारण करता हुआ, ओम को समझना, ओम ये ओम बोलने से आप पूरी सृष्टि का ध्यान कर रहे हैं। विष्णु सहस्र नाम में 1000 नाम है, एक नाम बोलते हो विश्वम विष्णु वशटकारो भूत भव्य भवत प्रभु। एक विश्वम बोलने से भू भुव स्व मह जन तप सत्य अतल वितल पाताल तलातल 14 ब्रह्मांड उसके अंदर में विश्वम बोलने से आ जाएंगे। कुछ बाकी नहीं, मैं तुम आप सब, ये पूरा बंबई अमेरिका लंदन सब उसमें आ गया विश्वम बोलने से। इसलिए विश्वम बोलने से ये नहीं सोचना चाहिए छोटा शब्द है ना, ओम बोलने से नहीं सोचना छोटा शब्द है ना। एक कपड़ा होता है 1 मीटर, 1 मीटर का कपड़ा होता है, 3 रंग डाल दिए, नीचे हरा है, बीच में सफेद है, ऊपर में केसरी है, यूं करने से बोलते हैं भारत में झंडो छे, सलाम कर लेते हो, उसे अपने जूते नहीं पूछते ना, क्यों? अरे मेरा राष्ट्र ध्वज है, उनका गौरव होना चाहिए। 1 मीटर कपड़ा है उसे तुम्हारी कमीज नहीं बनेगी, पजामा तो कभी नहीं बनेगा, कच्छा बन सकता है। तो उस कपड़े के लिए तुम इतना गौरव क्यों है? क्योंकि ये प्रतीक है, मेरे देश का प्राण है, मेरे देश का सम्मान है, मेरे देश का गौरव है। 1 मीटर कपड़े के अंदर में अगर वो मीटर भी कपड़ा नहीं हो, आधा मीटर भी क्यों नहीं हो, 3 रंग के बीच में उस केसरी और श्वेत और हरित रंग के मध्य में चक्र डाल दिया, उसको हम खड़े होकर सलाम करते हैं। तो ये ओंकार जो है यही ब्रह्म तत्व है, वेदों का वेद है ये, इसमें ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद अथर्ववेद है, यहां शिक्षा भी है, कल्प भी है, यहां पर तमाम वृत्तांतरी भी है। नारायण उसी में सब कुछ है, अल्लाह अहुर्मज़दा जिहोवा जंदेवस्त वाहेगुरु सतनाम जीसस मोसस बुद्ध महावीर राम कृष्ण दुर्गा काली गणेश, नथिंग इज मिसिंग इन द ओम। पकड़ तो लो एक बार, प्रयत्न कीजिए, आज ही से कीजिए, ये प्रसाद है हमारे ऋषि मुनियों का, हमारे कृष्ण का, हमारी भगवत गीता का, यही एक अंजलि है आपके लिए, चरणामृत, एक तुलसी का पत्ता रखा है, आप इतना प्यार से लेके आते हैं, प्यार से लेके जाते हैं, रुक्मणी ने तोड़ा विठला एका तुलसी दड़ानी, ओ हमारी जो सत्यभामा जी थी उनको बड़ा अहंकार था, मेरा बाप बहुत सोना वाला है, हाँ सेमंतक मणि से सोना कितना आता था 8 भार, 8 भार बोलने से कितना होता है 2500 टन, पता नहीं कितना होता है, उतना सोना उसको रोज मिलता था, कृष्ण को तोलने के लिए रख दिए। कृष्ण कहां तोलेंगे, कृष्ण विचार से नहीं तुलते हैं, कृष्ण प्रेम से तुलते हैं, कृष्ण प्रेम से जुड़ते हैं। कृष्ण है, एक दिन भोजन के बाद में विश्रांति कर रहे थे वाम कुक्षी, रुक्मणी माता उनको ये हवा कर रही थी, उस हवा के समय में कृष्ण रुक्मणी माता जी ने कहा प्रभु आज मुझे एक सपना आया था। कृष्ण कुछ नहीं बोले, वो नेत्र बंद करके लेटे हुए हैं। फिर रुक्मणि जी ने कहा प्रभु आज मुझे एक सपना आया था, फिर भी कृष्ण नहीं बोले। अब तीसरी बार क्या कहा प्रभु सपने में राधा ही थे। कृष्ण ने आकस्मिक आंखें खोली, राधे सपने में आ रही थी, देवी क्या कह रही थी? रुक्मणि जी उदास थे, उन्होंने कहा नाथ राधा ने तो कुछ नहीं कहा, मैं ही कह रही थी। कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, सुनते चले गए। फिर रुक्मणि जी ने कहा हमने राधे जी से कहा, राधे वृंदावन में तो तुम प्रभु के साथ में अकेली थी, ये हम 16008 है फिर भी प्रभु की सेवा नहीं कर पाते हैं, कभी कभी इतनी तमाम सेवाओं की उपलब्धियों के मध्य भी हमारे प्रभु खिन्न हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। लेटे हुए प्रभु उठ करके बैठ गए। देवी रुक्मणि जी के दोनों कंधे पकड़ लिए, आपने राधे को कहा हम खिन्न हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं, हम मायूस हो जाते हैं, I go into depression। रुक्मणि भी हड़बड़ा गई, उनको अपेक्षा नहीं थी कृष्ण इतने वहीवल हो जाएंगे। हाँ प्रभु फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? कृष्ण की उत्कंठा बड़ी है जानने के लिए। रुक्मणि जी ने कहा राधा तो चुप हो गई, कुछ भी नहीं बोली। हमने कहा कृष्ण मायूस हो जाते हैं, राधा कुछ नहीं बोली, किंतु राधा की आंख से 2 अश्रु गिरे। 2 अश्रु हमारी राधे जी के नेत्रों से, इतना सुनते सुनते कृष्ण बेहोश हो गए। देखिए कृष्ण का जो तादात्म्य है, कृष्ण का उसके साथ में ऐक्य है, वो स्वर्ण से नहीं तोला जाता है ना, वो आपके बाहर के ये सेवा परोपकार से नहीं होता है, उसको हृदय जोड़ना है। क्या कहा है? मनोरुधि निरुद्ध च, मन को हृदय में जोड़ना है, कृष्ण को ऐसे जोड़ दिया है। कृष्ण हमारे प्रत्यक्ष ना रहे तब भी हमारे स्वरूप है, वो हमारे बारे में, मैं कृष्ण के बारे में नहीं सोचूं, वो मेरे बारे में सोचे। हमारी भावना ये हो कि मैं उनके पीछे ना जाऊं, वो मुझको ढूंढता हुआ चला आए, मेरी साधना ऐसी हो। हमारे दिल्ली में एक निजामुद्दीन साहब हुए, निजामुद्दीन साहब ओलिया थे, बड़े बड़े दिव्य पुरुष थे, एक झोपड़ी में रहते थे और घास के ऊपर बैठते थे, टूटी हुई झोपड़ी है, लंगोटी बांधते थे, फूटा 50 जगह में फटा हुआ है कुर्ता भी था। एक मोमिन आता था उनके पास हमेशा, आकर के बोलता था, महाराज मेरी बेटी का निकाह करना है, मुझे थोड़ी सहाय दे दो, खैरात दे दो, बेटी का निकाह करना है, बेटी की शादी करनी है। रोज आएगा, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम बोलेगा, वो बाबा ऐसे बैठे रहेंगे, शरीर में तो रहते हैं, मन में केवल वही तादात्म्य स्वयं तयो तद्रूप तदाकार तन्मय, उसी परमात्मा के साथ में एक रहते थे। बार बार ये रोज मोमिन आएगा, एक दिन भी छोड़ता नहीं। 6 महीने चले गए तो झल्ला गया, उन्होंने बाबा के चरण पकड़ के हिला दिया, बोला सुनते नहीं हो क्या, मेरी बेटी है उसकी उम्र बढ़ती चली जा रही है, 6 महीना हो गया मुझको आते आते, बेटी का निकाह करना है, आपके दर पर दस्तक नहीं देंगे तो कहां जाएंगे, मौला खैरात के लिए आ रहा हूं, क्या करूं बताओ। धीरे से वो अपने समाधि से नीचे आए और चारों ओर देखा, क्या दें, जो बड़ी ही 3 जगह टेढ़ी है, पानी पीने के लिए कोई गिलास भी नहीं है, आधी फूटी मटकी भी नहीं है, न लाठी है, न कमंडल है, न दंड है, कुछ भी नहीं, क्या देंगे। देखा कोने में जो पहले कभी पहनते होंगे, ऐसे बहुत टूटे हुए और 19 जगह फटे हुए उनके जूते पड़े थे। बाबा ने खुद उठ करके उनको उठाया, लो ले जाओ। निजामुद्दीन साहब अपने स्थान से खुद उठे और उठा करके अपनी जूतियां उसके हाथ में दे दे, अब मौला क्या करे बेचारा, वो न फेंक सकता है, जानता है इसके लिए मेरे कुछ उपयोग नहीं है, फिर भी उसने अपने सिर में लगाए, मौला ने दिया है, दिल में भी लगाए, आंखों से भी लगाए, किंतु खुशी नहीं हुआ दिल से दुखी हो गया। 6 महीने के बाद मौला ने दिया तो ये दिया, चलो कुछ तो दिया है, मौला की इच्छा कुछ इंशाअल्लाह। वो अपने सिर में जो बांधा हुआ कपड़ा था उसमें बांध करके चला गया, दुखी तो था किंतु अपने गुरु में एक श्रद्धा थी, अल्लाह में एक विश्वास भी था, उसको अपने बगल में लेकर के गया। वो जब थक गया कहीं पेड़ के नीचे, उसी को सिराने रख करके सो गया। कहते हैं उस समय में कुछ बंजारे वहां से निकले, एक बंजारा जो अगुआ था, मुखिया था, उसने कहा रोक दो यहां पर, 40 ऊंट थे, ऊंटों में हीरा मोती पन्ना पोखराज माणिक नीलम ये सब भरे हुए हैं, रोको, मुझे मेरे मौला की खुशबू आ रही है, उसको लगता है कि मौला कहीं गए हैं, यहीं पर कहीं होंगे दाएं बाएं। देखिए लोगों ने चारों ओर जाकर के देखा कि यहां तो कोई नहीं है, किंतु एक मोमिन सो रहा है, मोहतरम, वो जो मोहतरम मोमिन सो रहा है, ठीक है उसको जगाओ मत। कुछ घंटे डेढ़ के बाद में वो जब उठा तो हमारे इस सौदागर ने कहा सलाम अलैकुम, मौला कहां से आ रहे हो, तशरीफ कहां से लाए, कहां से आए, तुम अपना काम करो, मैं पहले दुखी हूं, मुझे और दुखी मत करो, इंशाल्लाह मैं आपकी कोई तारीफ जान सकता हूं, कहां से आना हुआ। तो उसने रो दिया, 6 महीने से मैं जा रहा था औलिया निजामुद्दीन साहब के द्वार पर, उस दर पर दस्तक देते तंग आ गया, मेरी अपनी बेटी है उसके निकाह के लिए मैं कुछ पूछता था, और जब कुछ देने की बात आई तो देखो उन्होंने क्या दिया है, उस फटे हुए कपड़े के बीच में से जूतियां निकाली, उसके हाथ में थमा दी। सौदागर कहता है ये मेरे मौला की जूती, उन्होंने अपने हाथ से दी, अपने हाथ से उठ करके दी। उस सौदागर ने उसको अपने सिर में लगाया, अपने आंख में लगाया, चूमा, दिल से लगाया। मौला ने अपने हाथ से तुम्हें दिया, तुम्हारी बेटी के निकाह के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत दिल से। तू मुझको ये दे सकता है क्या? ले जाओ ना, ले जाओ, खुशी से ले जाओ। मैं क्या करूंगा, मैं क्या संभालूंगा, मेरे सिर में तो एक और आफत है, मौला की जूती को मुझे संभालना है। दो तो दिया ना, हम फेंक सकते, मौला की है, निजामुद्दीन साहब की है, औलिया की है, मानो खुदा की है, पर हमारे लिए क्या काम किया? जाओ जाओ। नहीं नहीं जाओ नहीं, आओ आओ। वो सौदागर उसका हाथ पकड़ करके ले गया। उस मोमिन को कहा ये ऊंट की डोरी पकड़ ले, एक ऊंट की डोरी पकड़ के चल, उसके पीछे बाकी भी 39 चल पड़ेंगे, 40 ऊंटों को लेकर के जा। तेरी बेटी क्या, बेटियों के भी बेटियां हो जाएंगी, 7 पुस्तक तक तेरे और कहीं पर हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। वो जानता नहीं था, उसने कभी दिनार नहीं देखी, उसको क्या पता है हीरा क्या होता है, मोती क्या होता है। वो तो चला गया जूतियों को सिर में रख करके। सौदागर निजामुद्दीन साहब के पास में आया, बड़े सम्मान से उनके सामने रखे। औलिया मुस्कुराए, पूछा सौदा कितने में किया? सौदागर ने कहा जनाब ज्यादा कुछ नहीं था, चंद कीमती पत्थरों के टुकड़े ही थे, केवल 40 ऊंट, उतना ही दे पाया मौला, ज्यादा नहीं था। निजामुद्दीन साहब ने कहा फिर भी सौदा सस्ते में पड़ा है। देखिए हम अपने कृष्ण को, अपने परमात्मा को हीरों से तोल लेते हैं, सोने से तोल लेते हैं, फूलों से तोल लेते हैं, उनको नवाज लेते हैं। उनको पता नहीं है कि जिनके आंखों की पलक से ये तमाम सृष्टि है, वो अनंत विभूषित करोड़ों सृष्टि उत्पन्न हो सकती है। जिनकी आंखों की पलकों से जब हमारा विश्वरूप दर्शन हो गया, हा अर्जुन क्या देख रहा है, यही देख रहा है, करोड़ों सूर्य उनकी आंखों में से आ रहे हैं, कान में से आ रहे हैं, नाक में से आ रहे हैं, मुंह से आ रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड उनके भीतर है। उनके लिए ये टुकड़े क्या होते हैं? हम परमात्मा के साथ में, हमें क्या करना है, केवल उनका जो हृदय उसको पकड़ लेना है। ये बहुत बड़ी गाड़ी है आपके पास में, 3.5 करोड़ रुपए की एक गाड़ी है मान लीजिए, किंतु उस गाड़ी के 4 पहिए में से एक पहिए का वॉल निकाल लो तो वॉल की क्या कीमत होती है महाराज? 5 रुपया, 10 रुपया। बड़ी कीमती गाड़ी है तो अच्छा वॉल डालेंगे तो उससे ज्यादा तो नहीं होता है। एक वॉल निकालो गाड़ी ठप, वॉल नहीं डाले तो चक्के में पानी हवा नहीं जाएगी। एक श्रद्धा, एक विश्वास। कुछ दिनों के पहले उड़ीसा में चक्का जाम था, कितने दिनों तक कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। दंडकारण्य में हमें जाना था, वहां पर बहुत बुरी अवस्था रही, कुछ सेवा के लिए जाना था। हम पहुंचे भुवनेश्वर, लोग बाग लेने के लिए आए थे, उनकी कार में गए, थके हुए थे तो पीछे सो गए तो सोते ही रहे। उनको पता है स्वामी जी आएंगे तो लंबा जाना है, 6 घंटा 7 घंटा, तो स्वामी जी पीछे सो जाएंगे, तो हमने सो गए पीछे, किंतु चक्का पंचर हो गया। ऐसे जंगल के बीच में जहां कोई इंसान नहीं दिखता है, पानी वाला भी नहीं है, कौन सा है करेगा, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है। इत्तफाक से वहां से ये उड़ीसा के महाराजा गजपति महाराज कहते हैं, दिव्य देव सिंह जी, वो भी उस मीटिंग में आ रहे, उनको निमंत्रण रहा तो वो भी जा रहे थे, तो उनको हाथ दिया तो गाड़ी रुकी। क्या बात है? बोले कि हमारा चक्का पंचर हो गया है, स्पेयर टायर नहीं है। वो कौन है साथ में? स्वामी अध्यात्म। अरे वो है क्या? ठीक है ठीक है। उन्होंने अपना चक्का दे दिया, लगाओ। हम तो सोते ही रहे, हमें कुछ पता नहीं है। 3 दिन वहां रुकना था, रात की मीटिंग के बाद में हमें चलना था, क्योंकि दूसरे दिन सुबह 11 बजे की फ्लाइट थी। हमने सोचा कि रात की मीटिंग पूरी कर लेंगे, सुबह अगर 4 भी बजे चल लिए तब भी हम समय से पहुंच जाएंगे। तो दोपहर भोजन के समय में गजपति महाराज ने हमसे कहा, महाराज जी आपका क्या कार्यक्रम है? मुझे पता नहीं है वो क्या क्या हुआ था, वो उन्हीं को पता था, मुझे किसी ने बताया भी नहीं था। जो लोग लेके आए थे मुझे उन्होंने छोड़ दिया, बाद में उनका हमारा कहीं मेल ही नहीं है, क्योंकि वो अपनी जगह में, हम अपनी जगह में है।
हमने कहा कि रात की मीटिंग पूरी हो जाएगी तो मैं सुबह कोई 3:30-4 बजे चल दूंगा, तो टमे से पहुंचूंगा। नहीं नहीं स्वामी जी, अभी दिन में ही चले जाइए, आप रात में रुकना नहीं, क्योंकि सुबह आप इतने गए ना, रास्ते में अगर कुछ हो गया तो कोई सहाय नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा रे, जगन्नाथ के द्वार पर खड़े हैं, सहाय कैसे नहीं मिलेगी? उसका वो आजान बाहु है, अरविंद नेत्र है, आत्मा भी राम है, उसे कर्तव्य। हम अगर उनकी प्रजा का देखभाल करते हैं, उनके सेवक बन करके, तो उनकी धर्म नहीं बनता है? वो बोले महाराज जी, धर्म तो बनता है, क्योंकि तो जगन्नाथ को छोटी छोटी बातों में हमेशा तकलीफ नहीं देना चाहिए। एक बार उन्होंने चक्र भेज दिया, कब भेजा था? तो उन्होंने कहानी बताई कि महाराज जी, आप तो सोए पड़े थे, हमारी गाड़ी का जो पहिया था ना, वही आपकी गाड़ी में लगा था। देखिए, हमारी जो एक भाव है उसको ऐसे जोड़ दीजिए आप, वो कहीं पर भी आएगा। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, उस एक को पकड़ करके उसके चिंतन करने चले जाओ, धूप लगेगी, वो आपके ऊपर में एक छाता लेकर खड़ा हो जाएगा। अगर आपके पांव जलते हैं, वो खुद चप्पल बनकर आपके लिए आएगा, किंतु आपकी वृत्तियां जो है, आपकी भावना जो है, उसको उसके साथ में जोड़ दो। बहुत बीत गए आप, ये समुद्र की हवा है। कल रात एक भवन में गए, उसका नाम था सी ब्रीज, मोहिनी बहन आहूजा का मकान का नाम है सी ब्रीज। बोले स्वामी जी, हमारे बच्चे रहते हैं, फिर रास्ते में हमको बताया पेड़ो रोड में ये हमारा मकान है। उसका नाम क्या है? बोलते हैं कि उसका नाम है ब्रिज भवन। तो अच्छी बात है, महात्मा और भी साथ में रहे। तो बोलते रहे, दोनों में फर्क हुआ क्या? वो भी ब्रिज है, ये भी ब्रिज है ना? वो तो ब्रिज है, सी ब्रिज है, समुद्र की खारी हवा है, ये तो ब्रज है, यमुना जी के तट पर खड़ा हुआ है, माधुर्य से भरा हुआ है। समुद्र तो खारा होता है, हम खारे समुद्र के बीच में चले जाते हैं, खारे समुद्र के पानी को टटोलते हैं, उनकी रेत को टटोलते हैं, किंतु जो उसका आत्मा है ब्रज, उसको भूल जाते हैं। ब्रिज बोलने से, ये ब्रिज बोलने से, वो हवा जो है वो अलग है समुद्र की। कृष्ण का ब्रज अलग है, उस कृष्ण के ब्रज को, कृष्ण के हृदय को टटोलो। कृष्ण स्वयं कहते हैं ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, वो जो ओम है वो मैं स्वयं हूं। व्याहरण अनुस्मरण का है, स्मरण नहीं अनुस्मरण। ये अनुशब्द बड़ा प्यारा है, द टोटालिटी के लिए बोलता है, कंजूसी नहीं करना, दिल से बोलना। 12वें अध्याय में कहा है ना, हमारे भगवान कृष्ण जी को अर्जुन पूछता है कि एवं सतत युक्ताये भक्तास्तम पर्युपासते, पर्युपासते उपासते नहीं, पर्युपासते दिल से, अनुस्मरण दिल से, सुखा नहीं है, प्रेम का भक्ति है, हृदय जुड़ा हुआ है, हृदय के साथ में अनुस्मरण, कॉन्स्टेंट कंटिन्यूअस एब्सोल्यूट सातत्य सघनता तादात्म्यता ऐक्य, देहम त्यजन, तब देह को त्याग करना। अनन्य चेताहा सततम यो माम स्मरति नित्यस, अनन्य चेताहा, चेताहा चित्त से, अनन्य न अन्य, 2-4-5 को नहीं। कमलेश मेरा पति है, सुरेश को मैं मन में प्यार करती हूं, और विलियम को देखती हूं तो मरमर जाती हूं, और ये अमजाद को देखती हूं, हाय सच एक स्मार्ट गाय, ये तो व्यभिचार है ना? व्यभिचार नहीं, विलियम बोले कोई भी बोले नहीं, मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, और दूसरा कोई नहीं चाहिए, एकमात्र एक, उसके चारों ओर कुछ भी नहीं, वही केवल अर्जुन की आंख के समान। अनन्य चेता सततम, ये सतत भी ये एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वम पर्युपासते, सतत जो है वो अत्यंत आवश्यक है, सातत्य चाहिए। मैं यहां बैठा हूं, कथा में हूं, तो मेरा भाव जो है केवल कृष्णमय हो जाए, कृष्ण का नाम लेते थे आंखों से जर्जर जर जाए, किंतु नीचे जाकर के जूते नहीं मिले तो साले सबके सब चोरी आते। जय जगदीश हरे, तन मन धन है तेरा, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश,
तन भी तेरा है, धन भी तेरा है, मन भी तेरा है, रोज बोलते हैं त्वमेव सर्वम मम देव देव। किंतु अभी चार पांच कार्यक्रम चल रहे हैं, दो तो भागवत हो रही है, दो प्रवचन होते हैं, तो भीड़ भड़का हो ही जाता है। हाँ, जब जूते इधर उधर से नहीं मिलेंगे तो साला सबके सब चोर के चोर ही आते हैं। तो क्यों? क्योंकि हमारा जो है लिप सर्विस है, हमारी भक्ति केवल ओट ओट तक है, अंदर नहीं है। कोई चिंता नहीं, ओट से थोड़ा धक्का मारो, अंदर लेके जाओ। हाँ, बेशना का जैसे मत करो। वो जो बेशना होता है ना, उसमें सफेद चादरें बिछाते हैं और सफेद गद्दा तक तक्की रख देते हैं और सफेद चांदनी वाला एक मंडप डाल देते हैं। सब लोग सफेद कपड़े पहन के आते हैं और रिक्शों में आ जाएंगे। तब तक क्या बात चलेगी? तब तक मेहंदी कहां रचाई है, अथाणु ना क्यों के नहीं, मेथी ना कुड़िया लावे के नहीं बात। और जब वहां जाते हैं तो ऐसा मुंह लटका के, वो भी आगे बैठे हैं तो, आगे नहीं बैठे हैं तो नहीं। हमारे हिंदी में बोलती है, तू कलावती, तू तो बहुत दिन में मिली, अब कोई मरता नहीं फिर कैसे मिले, कोई मर जाए तो वहां जाना पड़ता है, इसलिए मिलते हैं। और वहां जाकर के भी क्या करते हैं, वो बेशना में उठमणा में कितनों की शादियां बनती, कितनों की शादियां टूटती। क्यों? हमारे दिल के अंदर में कोई उड़ती नहीं है। कल मेरे को एक आश्चर्य हो गया, अहमदाबाद से एक पत्रकार का फोन आया है। हमारे अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर के महंत रामेश्वरानंद जी महाराज है, उनका देह विलय प्रातःकाल 9:30 बजे हो गया। तो वो 350 साल पुराना मंदिर है और वो जगन्नाथ मंदिर के महंत है, वो बहुत ही पवित्र चरित्र, बड़े त्यागी, एक सादा कपड़ा पहनने वाले, ऊपर कुछ पहनते ही नहीं, वो भी ट्रांसपेरेंट कपड़ा रहेगा, कॉपी नहीं आधा दिखता रहेगा, उसमें बैठते थे। केवल शान, कोई आए तो जय जगदीश, हाथ जोड़ना तो जोड़ना, नहीं तो देखना भी नहीं, अपने ही मन में रहना। कोई 16 साल से अधिक वो गद्दी पर रहे, कल प्रातःकाल शरीर शांत हो गया, 12 बजे उनको हॉस्पिटल से मंदिर में ले आए, 4 बजे पारखी चली, 5 बजे संस्कार हो गया। वहां पर एक प्रणव दवे नाम का एक सज्जन जो है दिव्य भास्कर का बैठा हुआ है। हमको जब पता हुआ तो हमने एकदम हमारे आश्रम में कहा, देखो भाई फूल की मालाएं लेकर के जाओ, शॉल लेकर के जाओ, आश्रम की ओर से सब होना चाहिए। हाँ, और वहां जितुका का रहेंगे, उनको बोलना चाहिए हम शिवानंद आश्रम से आए हैं, स्वामी जी बंबई में हैं। तो शिवानंद आश्रम के लोगों को जानता है वो प्रणव दिव्य भास्कर का पत्रकार, स्वामी जी क्या से? वो बंबई में। अरे बंबई में क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा प्रेमपुरी आश्रम में सत्संग करें। वो प्रेमपुरी आश्रम कहाँ है? वो तो बाबुलनाथ का। वो ठीक है, वो मौला साहब के जन्मदिन में जरूर गए होंगे। मेरे को फोन लगाया, स्वामी जी ये रामेश्वरानंद जी के बारे में कुछ बोलिए, मैं 10 लाइन लिखूंगा। ठीक है, मैंने बोल दिया, वो कारुण्यमयी माता के समान थे, वास्तव में पिता के समान थे, अजात शत्रु थे, त्यागी थे, तपस्वी थे और सादगी भरा जीवन था, परमात्मामयी थे। और उनके चले जाने से न केवल हिंदुओं ने, मुसलमानों ने भी अपना एक छत्र छाया गवाया, से सब बोल दिया। अच्छा, अब वो मौलाना के जन्मदिन में आप गए थे ना, वो बोलो। देखिए उधर मुर्दे के सामने बैठा है, हाँ, मृत्यु के बारे में लिख रहा है, उस समय 100 साल के जन्मदिन के बारे में भी लिखता है। उसको उधर प्रेम भी नहीं है, उधर दुख भी नहीं, कैसी अवस्था है? वो जैसे कि रेल, वो हमारे म्युनिसिपैलिटी का जो लैंप होता है ना, लैंप म्युनिसिपैलिटी का जो रास्ते में लाइट होती है, रोड स्ट्रीट लाइट, उसके सामने से कोई बहुत बड़ा अच्छा शादी का जुलूस निकले, उसमें एक नहीं 10 बैंड हो जाएं, 10,000 लोग रहें, 20 हाथी हो, 100 घोड़े भी हो, डम 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 करके पुलिस व्यवस्था में हो, उसको देख करके वो लाइट को खुशी नहीं होती, वो ज्यादा लाइट नहीं दिखाती है, वो लाइट जैसी वैसी रहती है। और उसके बाद में किसी का अकेला एक नो एक चोकरो मरी गये हो, हाय हाय लोग कर रहे हैं, क्या क्या करके लोगों ने, किसी ने मार दिया उसको, उसकी मैयत निकली है, लोग इतने दुखी है दुखी है, उसको देख करके वो लैंप पोस्ट है वो डीम भी नहीं होता है, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो इधर खुशी नहीं है इधर दुखी नहीं है। एक वेदांती महात्मा के माफी वो पत्रकार भी ऐसे होते हैं। हाँ, मुर्दे के बारे में लिख रहे हैं और किसका 100 साल रहा उनके बारे में लिख, क्यों? उनका किसी से संबंध ही नहीं है। किंतु एक संबंध रखो, क्या मेरे अखबार में बढ़िया छपना चाहिए, उसका संबंध है कि नहीं, तब हमको भी इस संसार में लिखना कि मेरे जीवन की जो मृत्यु की जो सांझ है वो ऐसी बढ़िया होनी चाहिए कि मैं केवल कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं सोचूं। मुर्दा है तो मुर्दा है, सौ साल है तो सौ साल है, मेरा हेतु क्या है, मेरा अखबार में बढ़िया मैटर जाए, मेरी दुनिया में कोई आया गया किंतु मेरे जीवन की सांझ है वो कैसी अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य। सर आगे विचार कल करेंगे, यहां वाणी को विराम देते हैं। परमात्मा सभी का मंगल करे, शुभ करे। आप सबके उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद। आपके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।